ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए जीएसटी परिषद की 55वीं बैठक के निर्णयों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं आर्थिक विश्लेषक शुभमोय भट्टाचार्य जी। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं सोनू सूद।
आज जैसलमेर में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन की अध्यक्षता में जीएसटी काउंसिल की 55वीं बैठक हुई और इस पर चर्चा के लिए इसमें क्या क्या हुआ, क्या इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई, हमारे साथ स्टूडियो में आमंत्रित हैं आर्थिक विशेषज्ञ शुभमोय भट्टाचार्य। आपका बहुत बहुत स्वागत है।
धन्यवाद
शुभमोय। आपसे जानना चाहेंगे ये जो 55वीं बैठक आज हुई जैसलमेर में, इसमें कौन से ऐसे फैसले थे जिनका सबसे ज्यादा कहें कि इंतजार था सबको, और जो आउटकम आई है उसमें आपको क्या आपको प्रमुख केंद्र बिंदु दिखाई देते हैं?
पहले तो सुनील जी, जब हम लोग जीएसटी काउंसिल के मीटिंग की जो होती है, इसका ये पटभूमि समझी कि ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार के वित्त मंत्रियों के बीच में ये सघन डिस्कशन होता है। उनके बीच में साल में कई बार, औसतन अबाउट 4 बार उनका ये मीटिंग होता है, और इस मीटिंग में जो जीएसटी टैक्स में जो विभिन्न वस्तु हैं उस पर क्या रेट्स होंगी वगैरह, उस पर चर्चा होती है और निर्णय होता है। ये नहीं कि ये पहली बार जीएसटी के काउंसिल में ये एक एक करके जैसे जैसे इश्यूज आते हैं ये चलते रहते हैं, उन पर डिस्कशंस होता है, डिसीशंस होता है। जैसे अभी वित्त मंत्री जी का बयान चल रहा है, तो इस बारी भी बहुत सारी इश्यूज सामने आ रहे थे और उन पर नजर डालने से पहले मैं सबसे पहले ये कहूंगा कि इन पर जो डिसीशंस होते हैं वो काफी अहमियत रखती है राज्य सारे जो स्टेट्स होते हैं उनके फाइनेंस के ऊपर, क्योंकि उनके लिए सबसे बड़ा टैक्स का स्रोत रहता है जीएसटी, जो अपने आप से आता है। एक तो होता है केंद्र सरकार से इनकम टैक्स का जो शेयर उनको मिलता है, इनकम टैक्स और कॉर्पोरेशन टैक्स, लेकिन इनकम टैक्स को, लेकिन उसको छोड़कर सबसे बड़ा उनके पास जो टैक्स का स्रोत आता है वो है जीएसटी। और इसीलिए स्टेट्स काफी पैनी नजर रखते हैं कि इन पर क्या छूट दे रहे हैं, क्योंकि छूट देने से उनके राजस्व में कम होती है, और किस पर बढ़ाया जा सकता है। तो इस केंद्र बिंदु को इस कंटेक्स्ट को सामने रखकर ही हम इस जीएसटी का चीज को हम आगे समझे। तो इसमें दो चीज इस बारी जैसे, और चूंकि जीएसटी हर गुड्स के ऊपर और या हर सर्विसेज के ऊपर लागू हो सकता है, इसीलिए जिस आम जनता को इस पर बहुत इंटरेस्ट रहता है कि किस चीजों पर टैक्स के रेट्स बढ़े, किस पर कम हुए, किस पर डिसीशंस
मुल्तवी किया गया, कीमतों पर भी असर पड़ता है,
क्योंकि कीमतों पर भी असर पड़ता है। तो अभी जीएसटी में इस बारी एक काफी जो ठोस मुद्दा था वो था इंश्योरेंस बीमा, खासकर हेल्थ इंश्योरेंस, कि हेल्थ इंश्योरेंस में जो प्रीमियम लोग भरते हैं उस पर अभी फिलहाल मोरलेस रेट है 18% जीएसटी रेट, उस पर एक डिस्कशन था कि उसको कम किया जाए या नहीं, और बाकी सारे भी बिंदु है। बट अगर हम इन टर्म्स ऑफ लार्जर इम्पैक्ट के हिसाब से देखें तो वो एक और चीज जिस पर जीएसटी ने आज डिसीशन लिया है वो है यूज्ड ईवी, यूज्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल, लेकिन उसका बाजार अभी ज्यादा कुछ नहीं है, उसके बारे में हम बाद में बात कर सकते हैं।
तो कई चीजों पर जो एग्जेम्पशन भी दी गई है, जैसे जीन थेरेपी पर एग्जेम्पशन दी गई है जो मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टेस्ट है, और फोर्टिफाइड जो राइस है उस पर 5% कर दी गई है जीएसटी, या जो इनपुट ऑफ फूड प्रिपरेशन के लिए जो इनपुट्स हैं उन पर 5% कंटिन्यूड रखी गई है। सो ये एक जो गरीब वर्ग है उसके उसको ध्यान में रखते हुए भी जीएसटी को यूज किया जाता है।
बिल्कुल, और खासकर आप देखेंगे जीएसटी, मैं जैसे मैंने कहा कि ये टैक्स पहले हम इनके थोड़ा सा अगर हम पीछे नजर करें तो आज से कई साल पहले केंद्रीय बजट में इन पर चर्चा होते थे, और आपको याद होगा कि उसमें उस वक्त के जो वित्त मंत्री होते थे वो एक लंबी लिस्ट लेकर पार्लियामेंट के सामने खड़े होते थे और विभिन्न वस्तुओं पर किस क्या रेट लगाए गए, क्या रेट कम किए गए, किस पर ज्यादा किया गया, उसका एक पूरा एक विस्तार से सामने देते थे, एक 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 हिसाब देते थे। वो सिलसिला खत्म हो गया जब से जीएसटी मैकेनिज्म आया है। अभी इस पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों की भागीदारी बन गई है और दोनों ही डिसाइड करते हैं, दोनों मिलकर, भारत के जो 28 स्टेट्स हैं और राज्य और केंद्र सरकार, ये सारे मिलकर डिसाइड करते हैं कि टैक्स रेट्स किस में होंगे। निश्चित ही मास कंजम्पशन की जो चीजें होती है, खासकर फूड आइटम्स, मास कंजम्पशन वाली फूड आइटम्स के ऊपर, उस पर जीएसटी कमेटी का जनरली नजर रहता है कि उन पर टैक्स रेट्स ना बढ़े। और आप देखेंगे बाजार में हर वक्त नए नए टाइप के प्रोडक्ट्स आते रहते हैं, उन प्रोडक्ट्स पॉपुलर भी हो जाते हैं, जैसे आज ये पॉपकॉर्न जैसे इसको लेकर डिस्कशन हुआ जिसके ऊपर हम आगे चर्चा कर सकते हैं। तो इन पर डिस्कशन रहता है, बेसिक उद्देश्य ये रहता है कि उन चीज जिस पर आम जनता का नजर है, जिसमें आम जनता को ज्यादा जरूरत है, उन पर टैक्स रेट्स कम रखा जाए या कुछ कुछ क्षेत्रों में उसको जीएसटी से दायरे से ही बाहर रखा जाए। और दूसरा कि जो सिन गुड्स है उनके ऊपर टैक्स रेट्स निश्चित ही करस्पॉन्डिंगली, अगर इन पर अगर कम रखा जाएगा तो सिन गुड्स पर टैक्स रेट्स बढ़ेंगे, तो उन पर टैक्स रेट्स बढ़ाया जाता है। जी,
आपने पॉपकॉर्न की चर्चा की, वो बहुत ही रोचक है क्योंकि कैरमलाइज्ड पॉपकॉर्न, लेकिन अगर हम डीपली इसको देखें तो उसमें एडेड शुगर है और ये हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से कहा जा सकता है कि कुछ कुछ हद तक ये सिन गुड है और इसलिए इस पर 12% कर दिया गया है जीएसटी।
उससे भी पहले मैं ये चीज बताऊंगा कि लोगों को लगता है कि अरे ये क्या सा बात है कि वित्त मंत्री, देश के वित्त मंत्री, राज्य वित्त मंत्री, ये सारे बैठ के पॉपकॉर्न के ऊपर टैक्स क्या लगेगा इस पर निष्कर्ष कर रहे हैं, और सुनने में कभी अटपटा भी लगता है। तो मेरा कहना यह है कि अटपटा वो चीज नहीं है, अटपटा होता है कि जैसे मैं कह रहा था कि फूड प्रोसेस्ड फूड्स के ऊपर जैसे नए नए प्रोडक्ट्स आएंगे और वो मार्केट में इंटरेस्ट लाएंगे लोगों को, तो निश्चित ही उन पर डिस्कशन होगा क्योंकि वो उनका सेल कितना बढ़ता है उस पर राज्यों का नजर आ जाता है कि भाई हम इस पर टैक्स ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। और चूंकि ये एक जिसे कहते हैं गिव एंड टेक वाली बात रहती है राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में, और कि किस और किस चीज पे ज्यादा टैक्स रख सकते हैं, किस पर नहीं रखना चाहिए, तो वो उस तरह से चीजों को निर्धारण किया जाता है। ये कुछ ऐसा नहीं होता है कि भाई ऐसा एक टॉपिक है जिस टॉपिक का कोई महत्व नहीं है, महत्व जरूर था
जी।
इसका अगर आप रेवेन्यू देखें, इसका अगर आप कंजम्पशन देखें, तो इन चीजों का बढ़ती यूसेज को देखकर ही राज्यों का इंटरेस्ट जाता है कि भाई हम इस पर टैक्स रेट्स क्या करें, क्या रखें, और उसी का नीति।
जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं ये उस कैटेगरी का भी एक प्रोडक्ट है,
ये ऐसा प्रोडक्ट है, ये ऑलमोस्ट हर तबके में इस्तेमाल होता है, और इसलिए इसमें डिसाइड किया गया जैसे कि जो सॉल्टेड पॉपकॉर्न है, जो यूजुअली पॉपकॉर्न सॉल्टेड ही होता है, उन पर रेट्स वही 5% वाला रहेगा बाकी फूड प्रोडक्ट्स जैसा। और जो कैरमलाइज्ड है, जो एक वैल्यू एडेड बोल सकते हैं,
उसमें शुगर भी,
शुगर वाला एडेड है,
सो हेल्थ के लिए
कार्बोनेटेड ड्रिंक, तो जैसे हम कार्बोनेटेड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक्स के ऊपर हायर रेट्स रहता है, तो उस पर हायर रेट्स रहेगा। तो अगर देखा जाए तो इट्स ये डिसीजन जो है वो सही लगता है।
एक रेट रैशनलाइजेशन का जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स है, उन्होंने और समय मांगा है, तो क्या लगता है आपको रेट रैशनलाइजेशन के डायरेक्शन में किस तरह की आगे चलकर हम डिसीजंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या रेट स्लैब्स कम हो सकते हैं?
ये एक जरूर एक 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 क्रिटिसिज्म का बिंदु है कि जीएसटी में भारत के जो रेट्स हैं 5%, एक निल रेट 5%, 12%, 18% और सिन गुड्स के ऊपर 28% का रेट, यानी कि सब मिलाकर पांच रेट्स बन जाते हैं। क्या इन पांच रेट्स को कम करके सिर्फ दो रेट, या कभी कहा जाता है जैसे जस्ट जीरो एंड 12% या 14%, इस तरह का एक रेट, दो रेट्स का जीएसटी कर सकते हैं? यानी फ्रेंकली इसके ऊपर चर्चा इसलिए चलता रहता है कि बाहर में अर्थशास्त्री, बाकी लोग टिप्पणी देते हैं, लेकिन जब ये मामला जब राज्य सरकारों में भी जाता है और केंद्र सरकार के बीच में जो आलोचना होता है तो वो उनका रवैया कुछ और रहता है। हो सकता है बाहर डिस्कशन से बाहर निकल के कुछ केंद्र कुछ राज्य मंत्री कुछ वित्त मंत्री कुछ राज्य के बोले कि भाई हम तो ये चाहते थे, हम तो वो चाहते थे, लेकिन अगर वो चाहते थे तो वो डिसीशन अकॉर्डिंगली ले सकते थे कि भाई हम इस तरह से हमने डिसीशन लिया है और डिसीशन को हमने लागू करवाया। जैसे एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं कि पेट्रोलियम गुड्स और इलेक्ट्रिसिटी इन पर और लिकर, ये तीनों चीजों पर जिन पर सबसे ज्यादा कंजम्पशन होता है किसी भी हमारे देश में, इन पर आज तक सहमति नहीं बन पाई है
जी।
और सहमति ना बनने की वजह से ही ये तीनों क्रिटिकल चीजें अभी भी जीएसटी से बाहर है और इसका इफेक्ट राज्य पर, इसके इफेक्ट लोगों पर भी पड़ता है। जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के ऊपर अगर रेट्स अगर कम रहे तो निश्चित ही लोगों को फायदा, ट्रांसपोर्टेशन में फायदा आएगा। उसी तरह से अगर प्रोडक्ट्स जैसे इलेक्ट्रिसिटी उस पर अगर यूनिफॉर्म रेट्स बने तो निश्चित ही लोगों के लिए काफी फायदा आएगा। लेकिन इसमें सर्वसम्मति होना जरूरी है क्योंकि वो मोरलिस यूनानिमस डिसीशन होता है और केंद्र सरकार चूंकि उनके पास, हालांकि उनके पास 1/3 वोटिंग राइट है, लेकिन वो मोरलिस यूनानिमस डिसीशन पे ही चलते हैं और ये बहुत बड़ी चीज है लोगों के लिए कि भाई इलेक्ट्रिसिटी का रेट क्या हो रहा है। लेकिन आप देखेंगे जैसे आज वो आज के एजेंडा पेपर्स में नहीं था और इसलिए नहीं है क्योंकि वो उन पर कोई सहमति बनने की अभी कोई आशय नहीं दिख रही है।
आपने यूज्ड व्हीकल्स की बात करी तो यूज्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में उन्होंने कहा कि अगर यूजर टू यूजर खरीदा जाता है तो कोई इंक्रीज नहीं है जो टैक्स है जीएसटी।
इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो के ऊपर जो डिसीशन आज लिया गया वो साफ तौर से ये है कि अगर यूज्ड जो नए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का रेट है उसका तो 5% रेट है वो चल रहा है, जो जब सेल करने आते हैं यानी कि सेकेंड हैंड कार्स जिसको हम कहेंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल उसका अगर कोई सेल करने आते हैं तो उस पर क्या टैक्स होनी चाहिए। तो डिसीशन वाज वेरी क्लियर कि अगर कोई आदमी कोई पर्सन दूसरे को बेच रहे हैं तो उस पर रेट नहीं रहेगा, कोई टैक्स नहीं रहेगा। अगर किसी यूज्ड कार डीलर को अगर वो गाड़ी दिया जा रहा है और वो उन पर कोई वैल्यू एडिशन करके बेचते हैं तो वो 18% टैक्स रेट होंगे, यानी कि पर्सन टू पर्सन सेल में कोई टैक्स नहीं। अगर इंडिविजुअल अगर कंपनी को अगर यूज्ड कार बेचा जा रहा है और वो कंपनी यूज्ड कार कंपनी अगर उसको बेच रहे हैं तो उन पर 18% टैक्स रेट होगा क्योंकि वो रेट सेम है बाकी और सारे यूज्ड कार के सेल्स में भी, पेट्रोल व्हीकल वगैरह उन पर भी सेम रेट है तो इस पर भी सेम रेट लागू होगा।
एक और चीज है सिंप्लीफिकेशन की उन्होंने बात की, रजिस्ट्रेशन ऑफ स्मॉल कंपनीज के लिए कॉन्सेप्ट नोट उन्होंने कहा है कि वो प्रिपेयर हुआ है, अप्रूव हुआ है और ये जो नया रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है ये अमेंडमेंट के बाद लागू होगा, ये कितना इम्पोर्टेंट है?
बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम चाहते हैं कि खुदरा बिजनेस को जितना फायदा मिल सके और जीएसटी का एक बहुत बड़ा मुख्य लक्ष्य यह था कि स्मॉल इंडस्ट्रीज के लिए टैक्सेस का रेट्स कम किया जाए, तो टैक्सेस का रेट्स कम किया जाए उनके लिए सिंप्लीफिकेशन लाया जाए, तो इसलिए आज का ये डिसीशन काफी सिग्निफिकेंट है कि स्मॉल इंडस्ट्रीज को जो पेन पॉइंट्स है उस पेन पॉइंट्स को किस तरह से सॉल्व किया जाए।
सो आपको लगता है कि आज के जो सारे डिसीजंस थे वर्क इन प्रोग्रेस रहता है जीएसटी ऑफ कोर्स हमेशा, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजंस आज लिए गए, उन पर चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद शुभम भाई।
शुक्रिया।
अभी आप सुन रहे थे जीएसटी परिषद की 55वीं बैठक के निर्णयों पर चर्चा, इसमें भाग ले रहे थे आर्थिक विश्लेषक शुभमोय भट्टाचार्य जी, कार्यक्रम का संचालन कर रही थी सोनू सूद। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है AIRNSDTalks@gmail.com।